नमस्कार। खान हसनैन अकीब साहब से बातचीत का सिलसिला जारी है। कल उन्होंने हमको बहुत अच्छी जानकारी तनकीदी और अन्य साहित्य के बारे में दी। आज हम अकीब साहब से अपना जो URD 462 यानी आगाही अदब ये जो कोर्स है उसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। उसमें जो किताब दी गई है उसका नाम है उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। सर मैं आपका स्वागत करता हूँ
जी
मेरी ओर से और विद्यापीठ की ओर से। और जैसे कि अपनी बातचीत चल रही कि उर्दू साहित्य में जो बेसिक जो है उसका
जी
जो मूलभूत है जो बेसिक है जो फाउंडेशन है उसके बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। अभी उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक का ये जो सिलसिला है
जी
ये सिलसिला शुरू होने के क्या कारण है और जो ये सिलसिला शुरू होने से पहले जो माहौल था
जी
वो माहौल कैसा था और क्या ये माहौल इस तरक्की पसंद यानी प्रोग्रेसिव अप्रोच के लिए जिम्मेदार है इसके बारे में जरा हमको बताइए।
जी जी सबसे पहले जो तलबा जो स्टूडेंट सुन रहे हैं यहाँ पर इस लेक्चर को देख रहे हैं उनका यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से और आपकी जानिब से भी उनका इस्तकबाल। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं तरक्की पसंद तहरीक इस पर हमारी बात होने वाली है तो तरक्की पसंद तहरीक के ताल्लुक से मुझे एक शेर याद आ रहा है कि एक तुम कि तुमको फिक्रे नशेबो फराज है। कैफी आजमी का शेर है कि एक तुम कि तुमको फिक्रे नशेबो फराज है एक हम कि चल पड़े तो बाहर हाल चल पड़े।
क्या बात है।
ये तरक्की पसंद तहरीक अगर हिंदुस्तान में उर्दू अदीबों की तरक्की पसंद तहरीक की बात अगर हम करें तो इसका सिलसिला हमको हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख में मिलता है क्योंकि जब तहरीक की बात चलती है कोई भी तहरीक हो तो तहरीक लफ्ज बना है हरकत से।
अच्छा।
जब कोई किसी चीज का एक्टिवेशन हो जाए जब जैसे आप मोबाइल में सिम कार्ड डालते हैं जब तक उसको एक्टिवेट नहीं करते मोबाइल का सिम किसी काम का नहीं है। समाज में भी जो मूल्य जो अखलाकी कदरें हैं जब तक वो एक्टिवेट ना की जाएं, अगर एक चीज मैं सीख कर आया हूं या एक चीज मेरे पास है वो मेरे ही पास है जब तक मैं उसको समाज में ले जाकर लोगों के सामने पेश ना करूं फिर लोगों को उस बात की तरफ रागिब ना करूं उसको प्रोपेगेट ना करूं उसका कोई फायदा नहीं है। तो उसको मोबिलाइज करना पड़ता है तब जाकर वो तहरीक बनती है। अब तरक्की पसंद उर्दू अदीबों की उर्दू मुसन्निफिन की तरक्की पसंद तहरीक का तारीखी अगर हम पस मंजर देखें तो इसकी शुरुआत होती है तालीमी बेदारी से। तालीमी बेदारी की तहरीक सर सैयद अहमद खान ने तालीमी बेदारी की तहरीक शुरू की। सर सैयद ने कहा कि तालीम चाहे किसी भी जुबान में हो कहीं से भी आए उसको हासिल करो। कहा कि अंग्रेज आज हम पर हाकिम है लेकिन उनकी जुबान ने क्या बिगाड़ा है अंग्रेजी में पढ़ो। लोगों ने कहा कि यार ये तो काफिर है क्योंकि ये तो अंग्रेजी सीखने की बात करते हैं। यही हाल इसके लिए ये नहीं था कि सर सैयद सिर्फ मुसलमानों के नुमाइंदा थे ऐसा नहीं था।
ऐसा नहीं
ये तो तहरीक थी तहरीक में तो कोई भी आ सकता है किसी के सबके समाज के लिए थी तो उन्होंने ये तहरीक चलाई थी। उन्होंने कहा कि आप क्या पुरानी बातें लेकर बैठे हैं आप वही पुराने रीति रिवाज जिससे समाज को कोई फायदा नहीं बल्कि समाज मुआशरा और ज्यादा उलझनों में पड़ता जा रहा है और ज्यादा जिल्लत की रुसवाइयों की गहरी गार में दफन होता जा रहा है। तो ये सब तहरीक अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो वहां पर भी हमको मिलता है कि उन्होंने भी तहरीक शुरू की यानी समाज मुआशरे की फलाह और बहबूद की तहरीक की। वो सर सैयद की तहरीक में और राजा राम मोहन राय की तहरीक में एक खास बात यह थी कि ये तालीमी माशरे की तालीमी और इस्लाही कोशिशें थी, ये तहरीकें थी कि राजा राम मोहन राय ने भी कहा कि आप ये सब पुराने रीति रिवाज ये सब ढकूसले हैं, इससे बाहर निकलो, शिक्षा ग्रहण करो, तालीम हासिल करो, कुछ पढ़ावा नहीं है ये, उससे बाहर का रीति रिवाज में और इसी में फंसे हुए हो। तो ये तहरीकें इनका आगाज हुआ यहां से। ये अगर हम तहरीक अदबी तहरीक की बात करें तो इन तहरीकों ने जाहिर सी बात है कि एक बुनियाद फराहम की अदबी तहरीक के लिए। इन तहरीकों ने यानी समाजी इस्लाह की तहरीक, तालीमी बेदारी की तहरीक, रवायात से बगावत की तहरीक,
सही बात
है ना, ये सब चीजें जो समाज के जो मुआशरे के मसाइल को बहुत ज्यादा गहरी कर रही थी, जो बातें उनके खिलाफ ये तहरीकें शुरू हुई। जाहिर सी बात है कि जब ये तहरीकें शुरू हो रही हैं तो अदब इससे अलग कैसे रह सकता है, क्योंकि अदब सिर्फ अदब के लिए नहीं होता है, अदब होता है अदब बराए जिंदगी। अदब में ये नहीं है कि मैं लिखूं और मैं ही पढ़ूं और मैं ही रख दूं उसको, अदब तो इसलिए कि मैं महसूस करूं, मेरे तजुर्बात मेरे मुशाहदात हों, मैं चाहे अफसानों की शक्ल में या शायरी की शक्ल में वो लिखूं और इसको समाज के सामने पेश करूं कि मैंने ऐसा महसूस किया है, तुम क्या महसूस करते हो। अब जो माशरे के दबे कुचले अफराद हैं वो मुत्तफिक हो जाते हैं कि हाँ तुम जो कह रहे हो ये सही है, हम नहीं कह सकते थे ये बात, तुमने कह दिए। ये
सही,
यहां से ये समाज जो लिटरेचर जो अदब जो है जो समाजी बन जाता है।
सर जैसे कि आपने कहा कि किसी ने पहल करनी चाहिए
जी,
फिर ये हो जाएगा, लेकिन जिसने पहल की वो, और उस पहल को जो स्वीकार कर रही है नकार रही है उसको
जी,
उनको कठिनाई तो आती होंगी,
बिल्कुल,
या आई होंगी, आज भी आती होंगी। तो ऐसी क्या क्या कठिनाई जिन्होंने ये पहल की उनको भुगतनी पड़ी, और समाज को भी उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको उनके पीछे जाने के लिए या उनकी वाहवाह करने के लिए क्या क्या समस्याएं उठानी पड़ी, इसके बारे में जान पाती।
देखिए, तरक्की पसंदों ने जब अपनी तहरीक शुरू की तो उस वक्त हमको एक बात बहुत तवज्जो के साथ समझनी चाहिए कि तरक्की पसंद तहरीक उर्दू मुसन्निफिन की जब शुरू हुई तो उस वक्त हिंदुस्तान के हालात क्या थे।
सही बात है।
पहली जंग अजीम खत्म हुए तकरीबन तकरीबन एक दाही से ज्यादा का अरसा गुजर चुका था। 1919 में अगर पहली जंग अजीम खत्म हुई तो 1919 से निकलकर 1935 में आने के लिए 16 साल लग गए। इन 16 साल में क्या क्या नहीं हुआ। इन 16 सालों में यूरोप में ही मुसोलिनी का डिक्टेटरशिप, उसकी आमरियत कायम हो गई, उसके बाद हिटलर की आमरियत जर्मनी में कायम हो गई, ये सारे हालात, और इटली और जर्मनी फिर स्पेन, यहां जो आमरियतें कायम हो गई इसका बराह रास्त असर इंग्लिस्तान पर पड़ा। इंग्लिस्तान की हुकूमत हिंदुस्तान में थी तो जाहिर सी बात है कि जब इंग्लिस्तान पर इंग्लैंड में असर पड़ा तो उसकी जो कॉलोनी थी नौ आबादियात हिंदुस्तान, यहां क्यों नहीं फर्क पड़ा होगा, बिल्कुल पड़ा। तो यहां जो मसाइल थे पहले ही, यहां पर गांधी जी 1919 में वापस आ चुके थे यहां पर, तो वहां से गांधी जी ने सियासी तहरीक शुरू कर दी। मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने खिलाफत की तहरीक शुरू कर दी, गांधी जी ने उनको सपोर्ट कर दिया, उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया, मुस्लिम लीग की तहरीक चल पड़ी। सियासी हालात को हम अलग रखकर अदबी हालात का जायजा नहीं ले सकते,
नहीं ले सकते।
इसलिए अगर हम किसी एक तहरीक की अदबी तहरीक की बात कर रहे हैं तो सियासी हालात को भी देखना पड़ेगा, कि सियासी हालात क्या थे, क्योंकि सियासत ही से, सियासत माशरे पे की जाती है, समाज पर, सियासत एक बड़े गिरोह पर की जाती है। हिंदुस्तान की आबादी उस वक्त भी करोड़ों में थी, तो ये करोड़ों लोगों पर चंद लोग, सैकड़ों में लोग हुकूमत करते हैं। आज भी पार्लियामेंट में हमारे 550 लोग जाते हैं, लेकिन उनकी 550 लोग जो नुमाइंदगी करते हैं, आज हम ये नहीं कहते कि हुकूमत करते हैं, आज वो लोग हमारी नुमाइंदगी करते हैं, तो वो 550 लोग 125 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करते हैं।
सही बात।
तो इसका मतलब यह हुआ कि 125 करोड़ लोगों के मसाइल हैं आज। तो उस वक्त भी जब अदबी तहरीक शुरू हुई तो उनके सामने, जब तहरीक शुरू हुई तो उनके सामने मसाइल थे। सबसे बड़ा मसला तरक्की पसंद तहरीक के जो करता धरता थे, जैसे उनमें अहम नाम निकलता है सज्जाद जहीर का,
सज्जाद जहीर, अच्छा,
तरक्की पसंद तहरीक के जो, उनको सज्जाद जहीर को तरक्की पसंद तहरीक का इमाम कहा जाता है।
ओहो,
इसलिए कि उनके वो सब पहले ही से, जब वो अंजुमन कायम हुई उसके बहुत पहले से कोशिश में लगे हुए थे, टैगोर से, रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलना, फिर नेहरू जी से मिलना, इन सबसे इसका मिलना जुलना, फिर वेस्ट के जितने लोग थे, इंग्लैंड में जितने बड़े बड़े इस प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले थे उनसे मिलना, ये सब उनका माहौल बनाना तैयार शुरू था। लेकिन हिंदुस्तान में आपने जो सवाल किया कि मसाइल क्या थे उनके सामने, उनको क्या मुश्किलात पेश आई, आज मैं एक काम शुरू करने जाऊं इतना आसान नहीं है, लोग साथ नहीं आते, खड़े नहीं होते साहब मोहल्ले ही में। देखिए एक बहुत मामूली मिसाल मैं देता हूं स्टूडेंट्स को भी, कि तरक्की पसंद तहरीक शुरू हुई तो इतना आसान नहीं है, हमने जैसा पढ़ लिया कि दो लाइन या चार सत्रों में पढ़ लिया,
सही बात।
मोहल्ले में अगर आपको, आपका पड़ोसी अगर आपको सता रहा है, ठीक है, आपके सामने या रोड में कहीं ट्रक लाकर खड़ा करता है और आपको तकलीफ होती है, आपके आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और वो खूब रेस कर रहा है गाड़ी को, आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप सोचते हैं कि भी एक किसी सिविक अथॉरिटी को लेटर लिखें, तो आप चार लोगों से, चार पड़ोसियों से दस्तखत लेने के लिए जाते हैं, चार दो उसमें से दो लोग दस्तखत नहीं करते, कहा क्यों नहीं करते, कहा कि वो साहब मेरा, हमारा रिश्तेदार है, वो हमारा पड़ोसी है, तो वो उसको ये नहीं समझाएंगे कि तू अपने भाई ऐसा मत कर, उसको तकलीफ होती है लोगों को, बल्कि वो इसको बताएंगे कि तू कंप्लेंट मत कर। तो ये प्रॉब्लम तो उनको भी आए क्योंकि वो एक नई बात कर रहे थे,
अंदरूनी विरोध,
हाँ, पुराने इससे लोगों को, पुराने जो कुछ भी उनके रीति रिवाज और ये सारे थे उससे हटाकर नई बात पेश कर रहे थे, ये तो किसी को मंजूर ही नहीं होता
है।
तो ये सारे मसाइल तो उनके सामने, फिर लोग मिलना, कि वैसी सोच वाले लोग भी तो मिलने चाहिए। आज अगर आप, अगर 10 लोगों का अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि 10 लोग चाहिए, तो 1000 आ जाएंगे, लेकिन 1000 में से वो जो आपका, हमारा जो पैमाना है, पैरामीटर, उस पे उतरने वाले कितने लोग आएंगे।
बराबर,
तो ऐसे ही उस वक्त भी ये है कि भी जो सोच लेकर वो लोग उठे थे वैसे लोग उनको मिलना, नहीं तो ये होगा कि वैसे लोग तो मिल जा रहे लेकिन वो अंदर ही से इस तंजीम को, इस तहरीक को खत्म कर दे रहे हैं, ये भी तो ये बड़े बड़ा मसला, लोगों के दरमियान जाकर अपनी बात पेश करना, फिर गवर्नमेंट इजाजत देती है या नहीं देती ये भी, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और वो जो तहरीक लेकर उठे थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो लोगों का शोषण, इस्तेसाल करती थी, एक्सप्लॉयटेशन करती थी, मजदूरों को मजदूरी नहीं, बहुत कम मजदूरी, दिन भर काम करो, है ना, सियासी आजादी नहीं आपको, आप खड़े रहकर ये नहीं कह सकते थे कि, इवन ये कि शायर शायरी नहीं कर सकता था उसमें अपने दिल की बात आजादी से, अगर वो बात अंग्रेजों के खिलाफ जाती तो वो शायरी नहीं कर सकता था, कहते कि भी ना सा अंग्रेज नाराज हो गए। मौलाना हसरत मोहानी की मिसाल ले लीजिए कि उनके प्रेस जब्त हो गया, उन्होंने अखबार निकाला, उसमें अंग्रेजों की पॉलिसी पर तनकीद की तो अंग्रेजों ने वो पूरा छीन लिया और पूरा जब्त कर लिया, चलो अंदर। तो ये सारे मामलात उसमें,
तो जैसे कि अभी आपने बताया कि मुसन्निफिन जो तहरीक होते हैं
जी
वो हुकूमत के ज्यादातर खिलाफ ही रहते हैं, लेकिन अगर हम आज की बात करें
जी
तो मुसन्निफिन तहरीक का जो आज का नेचर है, जो ढांचा है
जी,
वो हुकूमत के विरोध में नहीं है,
नहीं,
लेकिन समाज में ऐसी कुछ धाराएं या ऐसी कुछ श्रद्धाएं, विचारधाराएं हैं के जिसके खिलाफ ये तहरीक आज काम कर रहा है, तो ऐसे कौन कौन से आपको लगता है कि धाराएं हैं जिसके खिलाफ आज ये मुसन्निफिन तहरीक काम कर रहा है समाज में, हुकूमत के विरोध में नहीं बल्कि समाज में जो बुरा है, जो खराब है
जी,
उसके बारे में जरा बताइए
जी। ये भी एक बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि हुकूमत के खिलाफ नहीं, आज जो भी तहरीकें शुरू हैं, एक तो उसमें बुनियादी तौर पर उस तरह की तहरीक कोई नहीं है इतनी ताकतवर जितनी तरक्की पसंद तहरीक थी। उसकी वजह यह थी कि उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी और चूंकि अंग्रेजों की हुकूमत खुद एक सबसे बड़ा मसला थी, सबसे बड़ा मसला तो अंग्रेजों की हुकूमत थी। हम चाहते थे कि हमारा मुल्क आजाद हो, हमारे हाथों में हो, हम चलाए, हमारे घर पर दूसरे का कब्जा क्यों हो। तो जाहिर सी बात है कि यह अंजुमन तरक्की पसंद अदीबों की, मुसन्निफिन की जो अंजुमन और तहरीक थी, तो इसका ख्याल यही था कि भाई पहले तो आप हमारी चीज हमारे हवाले कर दो,
बराबर,
फिर ये जुल्म सितम की चक्कियां ये सब चल रही हैं, लेकिन आपने उसको जो कम मवाजना जो आप कर रहे हैं कि आज के दौर में ऐसी कोई तहरीकें हैं, और अगर हैं तो उनकी धाराएं क्या हैं, क्या उनकी विचारधाराएं हैं, किस तरह से। तो आज देखिए, चूंकि गवर्नमेंट हुकूमत बदल गई, हुकूमत ही बदल गई 1947 में, अब हम आ गए स्वराज की तरफ, है ना, ब्रिटिश राज से हम स्वराज की तरफ आ गए, तो वो मसाइल ही खत्म हो गए खुद ब खुद जो बुनियादी मसाइल थे। तो अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक का अचानक फिर जाहिर सी बात है कि जो जिन मसाइल को लेकर वो खड़ी हुई थी, तो उसके बाद वो मसाइल ही नहीं रहे। आज अगर कोई तहरीक अगर शुरू है तो वो हुकूमत के खिलाफ नहीं है, हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक इसलिए नहीं है कि हमने वो हुकूमत तो हमने खुद बनाई है, तो हुकूमत के खिलाफ चलने का मतलब ये होता है कि हम खुद अपने खिलाफ खड़े हो जाएं, इसलिए कोई मुसन्निफिन की भी अंजुमन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज कोई तहरीक चल नहीं रही, बिल्कुल तहरीकें हैं, लेकिन आज वो तहरीकें उतना उनका जिसको हम हिंदी में व्यापक कहते हैं, उतना उनका स्कोप जिसको कहते हैं, उतना ज्यादा नहीं है। उसकी वजह यह है कि आज हमने माशरे को बहुत ज्यादा तासुबात में जकड़ दिया है। हम देखते हैं उस वक्त उर्दू जुबान, जिसको आज हम उर्दू कहते हैं, आजादी से पहले ये हिंदुस्तानी जुबान थी, ना उर्दू ना हिंदू, उर्दू थी ना हिंदी थी, ये थी हिंदुस्तानी जुबान। आज अब उस वक्त की जो अंग्रेजों ने डिक्शनरीज लुगात वगैरह लिखी हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि हिंदुस्तानी अंग्रेजी हिंदुस्तानी लुगत। डंकन फोर्ब्स की डिक्शनरी अगर आप देखें तो उसकी डिक्शनरी में जो उन्वान है वो है हिंदुस्तानी अंग्रेजी लुगत, यानी उर्दू अंग्रेजी नहीं, और वो उर्दू की है, इसलिए कि उस वक्त उर्दू हिंदी का मसला था ही नहीं, सबके एक ही जुबान थी हिंदुस्तानी, यही उर्दू जिसको उर्दू आज कहते हैं। लेकिन जैसे ही 47 में हम लोग आज़ाद हुए, तो फिर सारी चीज़ें, फिर सबको याद आ गया कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, सबको याद आ गया कि ये हिंदी होती है, ये उर्दू होती है, हिंदुस्तानी गई क्योंकि अब हिंदुस्तान हमारा हो गया।
क्या बात, सही बात।
तो ये सारी चीज़ें अब हमने सब जकड़ लिया इसमें, अब तासुबात आ गए हैं। अब यह है कि हमारा इलाकावाद, तेलंगाना की आपने तहरीक देखी, हमको तेलंगाना चाहिए, कितनी स्टेट्स बन गई हैं, कितनी रियासतें बन गई हैं, तो हम सब उसमें जकड़ गए कि अब हम एक कौन सी ऐसी चीज है कि जिस पर हम एकजुट हो सकें, यूनाइट हो सकें, मुत्तहिद हो सकें। तो अब इत्तेहाद की बात नहीं होती है, अब बात होती है इंतशार की। तो एक बड़ा तबका अब इंतशार की सियासत, इंतशार का अदब पैदा कर रहा है। अब पता नहीं अब कितने लोग मुझसे मुत्तफिक होंगे, लेकिन ये बात तो तय है कि इंतशार की, आज जो नॉवेल्स लिखे जाते हैं उसमें यह रहता है कि एक तबके को उसके खिलाफ जो कुछ भी मेरे दिल में भड़ास निकाली जाती है उस नॉवेल के जरिए से। मैं अफसाना लिखता हूं तो उसमें मैं कैरेक्टर ऐसे बनाता हूं कि जिसके अंदर एक दूसरा जो तबका है, इसी समाज का दूसरा अंग, हिस्सा, भाग, वो उसको कहां मैं उसको जलील कर सकता हूं। मैं शायरी करता हूं तो ऐसी के जहां जरूरत ना हो, जहां पर अमन और शांति की जरूरत है, तो मैं उसको, उस अमन को खराब करने और भंग करने के मैं अपनी शायरी से काम लेता हूं। ये अदीबों की एक बड़ा गिरोह जो है वो ये काम करता है। उसके खिलाफ अब जो कुछ आज जो तहरीक चलती है, जिसको हम सेक्युलर, हम या एक यही हम प्रोग्रेसिव मूवमेंट का ही एक हिस्सा है, यानी तरक्की पसंद तहरीक का हिस्सा है, कि अब वो ये करते हैं कि साहब ये नहीं होना चाहिए, तो आप ये मत देखिए, आप इसको इस पैमाने से मत आंकिए। तो जो माशरे के लिए तकसीम, माशरे को तकसीम करने वाले जो पैमाने हैं उसको हटा दीजिए, आप ये देखिए कि मुल्क की सालमियत और उसकी बका और उसका इत्तेहाद कैसे कायम रह सकता है। यकजहती की बात कीजिए, ये तहरीक एक सो ये चल रहा है,
यानी पूरे समाज को आगे ले जाने वाली जो तहरीक है,
जी जी जी,
उसका ही चलन आजकल है और उसकी जरूरत भी है,
जरूरत है उसकी
जरूरत भी है। सही बात है सर। पहली कुलहिंद कॉन्फ्रेंस जो हुई थी,
जी जी,
उसमें प्रेमचंद जी का बहुत अच्छा बयान आया था,
जी जी।
तो और ये बयान जो मुसन्निफीन तहरीक है
जी,
उसको बहुत आगे ले गया, तो इसके बारे में जरा बताइए हमको।
सबसे पहली तहरीक ये अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का क्याम जब अमल में आया, तो बाकायदा तौर पर 1947 1935 में अमल में आया। इसकी पहली कॉन्फ्रेंस 1936 में हुई, इसकी सबसे पहली कॉन्फ्रेंस। और तरक्की पसंद अदबी तहरीक की सबसे पहली कॉन्फ्रेंस 1936 में अप्रैल में हुई। इसके सदर मुंशी प्रेमचंद थे। सज्जाद जहीर ने मुंशी प्रेमचंद से दरख्वास्त की, पहले उन्होंने इनकार किया, कहा कि नहीं मुझसे ज्यादा लायक लोग हैं, लेकिन फिर आखिर में मान गए, कहा कि नहीं ठीक है इसकी सदारत मैं करता हूं। वो इस कॉन्फ्रेंस के सदर रहे। इसकी सबसे अहम बात जो मेरे जहन में यह है कि सज्जाद जहीर लंदन में रहकर यह तरक्की पसंद अरबी तहरीक के लिए बुनियाद बना रहे थे, तो वहां से भी यहां हिंदुस्तान वो खतो किताबत करते थे, तो हिंदुस्तान में उस तहरीक के नजरियात को सबसे पहले उसका इस्तकबाल करने वालों में मुंशी प्रेमचंद थे। सबसे पहले,
सबसे पहले।
इसीलिए जब सज्जाद जहीर हिंदुस्तान आए तो सबसे पहला और मुनासिब तरीन आदमी जो उनकी नजर में था इस कॉन्फ्रेंस की सदारत के लिए वो मुंशी प्रेमचंद थे। और ये पहली कॉन्फ्रेंस अपनी दो चीजों की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर रही। एक तो अंजुमन का ऐलाननामा, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का ऐलाननामा, और दूसरे मुंशी प्रेमचंद का खुतबा सदारत, यानी जो सदर की हैसियत से उन्होंने खुतबा दिया, एड्रेस किया, वो दो चीजें। तो अब हम उसके ऐलाननामे की अगर बात करते हैं तो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के ऐलाननामे में सबसे पहला नुक्ता, सबसे पहली बात जो की गई वो ये थी कि जो कदामत परस्ती है, जो पुराने फरसूदा ख्यालात चले आ रहे हैं, उससे को नजात दिलाई जाए। और ये काम करेगा कौन? ये अदब करेगा, लिटरेचर करेगा, साहित्य, यानी शायरी से। अगर तरक्की पसंद शायर है तो वो अपनी शायरी से वो काम लेगा, तरक्की पसंद अफसाना निगार है तो वो अपने अफसानों से वो काम लेगा, तरक्की पसंद नावेल निगार है, तरक्की पसंद तनकीद निगार है तो वो तनकीद निगार, तरक्की पसंद उन पैमानों को सामने रखकर ये काम करेगा। ये उनका ऐलाननामा ये था। और फिर ये कि इसमें जो तरक्की पसंद नजरियात जो कायम किए थे उन्होंने, इन नजरियात को कितनी हद तक अपने हत्तल इम्कान कोशिशें करते हुए हम आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपने ख्यालात को, अपने नजरियात को, उसमें ये बात, उस पर गौर फिक्र किया गया। क्योंकि अच्छा, दूसरी एक और चीज जो इस अंजुमन, इस कॉन्फ्रेंस में बात जिस पर गुफ्तगु की गई, बहस की गई, वो ये है कि जो एक सुस्ती छाई हुई थी, क्योंकि हालांकि पहली जंग अजीम खत्म हो चुकी थी, दूसरी जंग अजीम बहुत नजदीक थी, शुरू होने के, और उसके बाद आजादी की तहरीक भी मुख्तलिफ सतहों पर चल रही थी, ये सब होने के बावजूद भी इन्होंने ये देखा तरक्की पसंद मुसन्निफीन ने कि फिर भी एक सुस्ती छाई हुई है, फिर भी जो लोग, बहुत सारे लोग शायरी कर रहे हैं वही पुरानी रगो बुलबुल,
सही बात
है ना, मतलब गुलो बुलबुल की शायरी हो रही है, तो वो सब उन्होंने कहा कि ये सुस्ती वगैरह ये सब इसको हटाया जाए। उसमें मुंशी प्रेमचंद के खुतबे की खासियत जो है वो ये रही कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने खुतबे में पुराने अदब पर तनकीद की, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने सब देख रखा था, क्योंकि वो उससे पहले के आदमी थे, तरक्की पसंद नजरियात से पहले के, उनके दिल में भी ये ख्यालात थे और वो तो सबसे पहले मुत्तफिक होने वाले लोगों में थे तरक्की पसंदों से, इसीलिए वो बहुत ज्यादा सपोर्ट, बहुत ज्यादा हिमायत करते रहे वो तरक्की पसंदों की। तो उन्होंने कहा कि भाई ये पुराने जितने भी हैं, ये पुराने ख्यालात, पुराने नजरियात, पुराना अदब जो भी जिस धड़े पर चल रहा है वो सब इसको, ये आउट ऑफ फैशन हो गया, अब नई बात की जाए, क्योंकि हालात बदल गए, तो जो हालात के साथ ना चले वो पीछा रह जाएगा, है ना।
सही बात।
तो अगर हम तीन लोग हैं साथ में चल रहे हैं और एक आदमी अपने जूते का बंद बांधने के लिए झुक गया
तो पीछे रह जाएगा,
तो बाकी तो साथ में चलते रहे और ये अपना बंद बांधने में लगा रहा तो जमाना तो काफी आगे निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जमाने के साथ चलो, और फिर ये तरक्की पसंदों ने जो काम किया, तो अपने नजरिया जो उनके रहे, तो उन्होंने पहल की ना, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे नाम से करवट बदल नहीं सकता, तुम्हारे नाम से करवट बदल नहीं सकता, हमारे नाम से आवाज दो जमाने को।
क्या बात है।
तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि हम उस नजरिए को लेकर चल रहे हैं, ये तब्दीली का नजरिया था कि जो पुराना चला आ रहा है उसको हटाइए बाजू और नई तब्दीलियां लाइए। और तब्दीलियां कैसी, तब्दीलियां सेहतमंद तब्दीलियां, माशरे को तब्दील करने वाली नजरियात, ये सारी चीजें थी। तो मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि अभी नया अदब जो है उसकी इतनी जरूरतें हैं, नए अदब की जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करना चाहिए। आप लिखिए तो फिर नई बातें लिखिए, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। मुंशी प्रेमचंद ने यह कहा कि अदब जो है वो मकसद के बगैर मकसद के अदब नहीं होना चाहिए।
सही बात है।
आप अगर मकसद से हटकर अगर कोई तख्लीक कर रहे हैं कि भाई फलां के आपने उसके एक राजा जी हैं, नवाब साहब हैं, उनके लिए कसीदा लिख दिया, ये अदब का मकसद पूरा नहीं हो रहा है। लिखने वाले का मकसद पूरा हो रहा है कि कुछ उसको मिल जा रहा है पैसा, है ना, लेकिन ये कि भी समाज का माशरे का मकसद पूरा नहीं हो रहा है। तो आप माशरे का मकसद पूरा करने वाला अदब लिखिए किसी भी शक्ल में। तो ये तरक्की पसंदों की सोच थी। मुंशी प्रेमचंद ने अपने खुतबा सदारत में यही कहा, उन्होंने ये भी कहा कि भी अदीबों को, फिर एक और जो अहम बात उन्होंने कही अपने खुतबा सदारत में, वो ये कही कि जो अदीब हैं इन अदीबों को अब समाज के माशरे के तई उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं ये समझना चाहिए। अदीब ये नहीं है कि सिर्फ मैं लिखूं और मशहूर हो जाऊं। कहा कि हसन नाकिब तो बहुत ज्यादा मशहूर हिंदुस्तान में नेट वेबसाइट पे छपते हैं, वो उस पर शाये होता है, ये नहीं, ये हो कि वो क्या लिख रहे हैं और समाज के लिए उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, समाज में क्या क्या चल रहा है उसके लिए आप क्या लिख रहे हैं वो बताइए। जो मसाइल आ रहे हैं माशरे को, जो मसाइल दरपेश हैं आप लिख रहे हैं। मैं अपनी शायरी में अगर माशरे की बात नहीं करता हूं, उनके मसाइल को उजागर नहीं करता हूं, तो मेरी शायरी किसी काम की नहीं। मुंशी प्रेमचंद ने यह कहा।
सर, मुसन्निफीन तहरीक में जैसे प्रेमचंद जी ने अपना योगदान दिया
जी,
उसके और अभी जो आपने बताया उससे ऐसा लगता है कि लीडरशिप की जरूरत है प्रोग्रेसिव जो मूवमेंट है उसके लिए। तो मुंशी प्रेमचंद जी के साथ साथ हसरत मोहानी का भी कुछ इसमें योगदान रहा है।
जी जी जी,
उनका क्या योगदान है इसके प्रति?
देखिए, हसरत मोहानी का सबसे बड़ी अगर उनका ताउन और उनकी खिदमत रही तो वो नजरियाती ताउन था। जिस तरह से मुंशी प्रेमचंद ने हिमायत की उसी तरीके से हसरत मोहानी ने भी तरक्की पसंद नजरियात की और तरक्की पसंद अदबी तहरीक की पुरजोर हिमायत की। उनको वो इस बात पर मुत्तफिक थे कि तरक्की पसंद तहरीक इश्तराकियत की तहरीक है, कम्युनिज्म की तहरीक। कम्युनिज्म कौन सा कम्युनिज्म? वो कम्युनिज्म जो समाज में मसावात की बात करता है, जो सबको यकसा मौके देने की बात करता है,
इक्वालिटी
की बात करता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में ये जो ऊंचे और नीचे का जो फर्क है इसको जितना कम किया जा सकता है उसमें मेरी पूरी खिदमत तुम्हारे साथ है।
क्या?
इन नजरियात के लिए हसरत मोहानी ने जब अखबारात में, मैंने जैसे पे अभी भी कहा कि अखबारात शाये किए, अखबारात चूंकि वो हुकूमत से टकरा रहे थे, हुकूमत ने अखबार भी छीन लिया, लिथो प्रेस भी छीन लिया, जब्त कर लिया और सब सब चला गया और उनको जेल में डाल दिया। तो ये नजरियाती हिमायत थी मौलाना हसरत मोहानी की जो उन्होंने अंजुमन तरीके पसंद मुसन्निफीन को अपने तौर पर दी। और जहां जहां पर भी उनके कॉन्फ्रेंसेस होती रही मौलाना हसरत मोहानी शामिल रहे उसमें। मैं एक मौलाना हसरत मोहानी की बेनियाजी का आलम, यह मैं थोड़ा सा आपको स्टूडेंट्स भी तलबा भी ये बात जान लें कि आजादी के बाद 1952 में जब जनरल इलेक्शन हुए तो ये वो शख्स था कि जिसके पास कोई पैसा नहीं था जेब में, इसके पास दो जोड़े होते थे, एक जोड़ा धुलता था तो दूसरा जोड़ा पहना बदन पे होता था। तो 1952 में ये एमपी बन गए, लोगों ने खड़ा किया और चुनकर भी लाया। एमपी बनने के बाद ये दिल्ली पार्लियामेंट का सेशन हुआ, इजलास हुआ, तो ये पार्लियामेंट में गए। पार्लियामेंट में इनके नाम से रेलवे टिकट का जो TADA मिलता है, तो उन्होंने पर्चा काटा, कहा कि साहब ये आपका, तो उन्होंने कहा कि ये क्या, तो कहा कि नहीं, एक एमपी को फर्स्ट क्लास का किराया जाने आने का दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आप देते होंगे, ये पैसा आपकी जेब का नहीं है, ये आवाम का पैसा है जो यहां आता है। मैं थर्ड क्लास में सफर करके आया हूं, जितना किराया दिया आप मुझे उतना ही दीजिए, फर्स्ट क्लास में मैं आया ही नहीं तो मैं पैसे लूं क्यों? उन्होंने वापस किए पैसे। ये एमपी बात निकली, वही शख्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपने सवाल किया, तो मैं ये आज की सियासतदान और उस वक्त का सियासतदान, मैं उसका मवाजन आपको
बहुत बहुत याद आ गया। ये आवाम के प्रति जो जिम्मेदारी है
जी जी
वो निभानी बहुत जरूरी है। सर, जवाहरलाल नेहरू जी का भी कुछ तकरीर था इसके बारे में, तो वो क्या था?
जवाहरलाल नेहरू चूंकि उस वक्त आज़ादी की तहरीक में बहुत मसरूफ थे, मुंशी प्रेमचंद का भी ज्यादा जोर इस बात पर था, उन्होंने सज्जाद जहीर से कहा कि आप एक काम कीजिए कि सबसे पहले आप इसकी सदारत के लिए नेहरू जी से बात कीजिए, क्योंकि वो उनके नाम से एक अलग पैगाम जाएगा। लेकिन उनको इस बात का एहसास था कि पंडित जी नहीं आ सकेंगे क्योंकि मसरूफ बहुत थे। लेकिन कुछ वक्त पंडित जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ वक्त निकाल लिया उसमें, और उन्होंने अपनी तकरीर में यह कहा कि अदब और सियासत ये दो चीजें एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम हैं। जिस तरीके से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अदब और सियासत दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह
अलग
सकते
नहीं।
तो अदब जो काम कर रहा है वो सियासी शऊर पैदा कर रहा है, सियासी शऊर अवामी शऊर होता है, तो इसलिए अदब को सियासत के साथ जोड़कर देखना ये एक वक्त का तकाजा है जिसको पूरा किया जाना चाहिए। मुझे हैरत इस बात पर भी है, हैरत नहीं है बल्कि ये एक तारीखी सच्चाई है, वो इसी आप तलबा जो हैं आप बाशऊर हैं और आप जानते हैं, ग्रेजुएट हैं आप, इस साल के बाद आपको ग्रेजुएशन का ग्रेजुएट मुकम्मल हो जाएंगे आप, तो ये पढ़िए कि हिंदुस्तान में जमहूरियत आज कायम है, लेकिन इससे पहले जब आज़ादी की तहरीक चल रही थी तो उस वक्त सियासी नज़रियात क्या थे? क्योंकि नेहरू जी अगर अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के प्लेटफॉर्म से खड़े होकर अगर इश्तराकियत की हिमायत कर रहे हैं, कम्युनिज्म की हिमायत कर रहे हैं, और अचानक 1950 में जब कौन सा निज़ाम हुकूमत अख्तियार किया जाए तो हमारे पास जमहूरियत आ गई, कम्युनिज्म नहीं आया। हालांकि हम पर ये चलते चलते ये तारीख की बात भी बताता चलूं कि हालांकि उस वक्त हम पर रूस भी डोरे डाल रहा था कि हम कम्युनिज्म को अपना लें,
अपना ले सही,
और मगरिब भी, चूंकि बरतानिया हमको आजाद कर चुका था, लेकिन वो भी चाह रहा था कि नहीं, जिस तरह से इंग्लिस्तान में जमहूरियत है ऐसे ही हिंदुस्तान में भी जमहूरियत कायम, और वो चाह रहा था कि रूस चाह रहा था कि इस तरह किया था, लेकिन ये कि भी हमने जमहूरियत का इंतखाब किया और रूस का अंजाम हम देख रहे हैं कि 1992 में रूस इसी इश्तराकियत यानी कम्युनिज्म की वजह से टूटकर बिखर गया।
सर, आपने कहा कि आवाम और अदब
जी
दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, और उस वक्त ये भूमिका थी कि अदब ने आवाम के साथ चलना चाहिए, आवाम को साथ देना चाहिए। लेकिन अगर आज कोई आवाम के हित में लिखता है या वो झुक गया आवाम के बारे में, तो ऐसा मानते हैं कि इसने अपना फ्रीडम खो दिया है। एक लेखक की जो स्वतंत्रता होती है
जी,
खुद सोचने की, क्या सोचना उसका जो फ्रीडम रहता है वो उसने खो दिया, ऐसा आज कहते हैं। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव अपना जो मुसन्निफिन तहरीक है
जी,
उसके लिए अच्छा है या बुरा है?
नहीं, ये बदलाव अगर हम आजादी इजहार की, आजादी इजहार राय है ना, हर एक को अपनी राय के इजहार की आजादी है, हमको हमारे दस्तूर ने दिया, हिंदुस्तान के दस्तूर ने 1950 में जिसको हमने खुद पर नाफिज किया, उस दस्तूर ने हमको ये आज़ादी दी है कि हम जो चाहें बोलें, एक आज़ादी है, लेकिन इसके साथ एक बंदिश बांधी है कि ऐसा ना बोलें कि जिससे दूसरे को तकलीफ हो। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता
बराबर
कि आप चलें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के गर्दन पर पैर रखकर चलें। आप अपने रास्ते पर चलिए, दूसरे के रास्ते में पैर क्यों अड़ा रहे आप, उसकी आजादी नहीं है आपको। तो इसी तरह जो अदबी तहरीकें हैं हिंदुस्तान में आज भी, वो जो जिस तरह कुछ लिखने वाले हैं कि जो अननेसेसरी अपनी आजादी के नाम पर उसको एक متنازعہ بنا دیتے ہیں, کنٹروورشیل بنا دیتے ہیں,
بہت ہی آزادی لیتے,
بہت آزادی لے لیتے. جیسے ایک, خیر اب اس میں تو وہ نہیں ہو پائے گا, لیکن بہرحال آزادی کا پہلے یہ ہے کہ ابھی ہم نے آزادی کا مفہوم سمجھنا چاہیے کہ آزادی اصل میں ہے کیا. بے راہ روی کو آزادی نہیں کہا جاتا ہے, ہے نا. آج اگر ہماری بچی, ہمارا بچہ کچھ, ایک شعر مجھے دیکھیے, آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے, مجھے اس کی تعریف مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک شاعر نے کہا کہ صاحب زادہ پچھلی رات سے غائب ہے, صاحب زادہ
پچھلی رات سے غائب ہے,
گھر کے اندر رشتے والے بیٹھے ہیں. یہ آزادی نہیں ہے, آزادی صرف یہ ہے کہ جاؤ تعلیم حاصل کرو, ہے نا, اور اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھو, اور اپنا بھی اپنی زندگی کا بہتر کیا ہو سکتا ہے وہ حاصل کرو. یہ نہیں کہ آپ بالکل مادر پدر آزاد ہو گئے. آزادی کا مطلب کہ ایک اپنے حدود میں رہتے ہوئے بات کرنا.
سر یہ دوسری کلہین کانفرنس جو ہوئی, اس سے مصنفین تحریک کو کیا لابھ ہوا, اور ایسی کون سی گتی ودیا ہوئی جس کے کارن
جی
یہ اور آگے بڑھتی چلی گئی اور آگے نئے نئے وچار آ گئے, اس کے بارے میں ذرا بتائیے.
دیکھیے دوسری کلہین کانفرنس جو انجمن ترقی پسند مصنفین کی ہوئی الہ آباد میں,
الہ آباد میں
جی, تو اس تحریک میں جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ پنڈت جواہر لال نہرو کا وہ خطبہ, وہ الہ آباد کی ہی تحریک, وہ وہیں اسی اس میں دیا تھا انہوں نے, تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسری کانفرنس میں پہلی کانفرنس کے بعد سے جو بھی کارگزاریاں, جو کچھ بھی سرگرمیاں ترقی پسند انجمن انجام دیتی رہی, اس کا لیکھا جوکھا, اس کا پورا حساب کتاب کے بھی ہم نے پہلی کانفرنس یعنی ہمارے آغاز کے بعد سے اب تک کیا کیا, ہم کو اپنے مقاصد میں کس درجے کامیابی حاصل ہوئی, یہ سب
لکھا,
اور ابھی ہمارے کیا مقاصد میں کیا توسیع ہوئی ہے, آگے ہم کیا کرنے والے ہیں, نظریات میں کیا تبدیلی آئی ہے, عوام میں کس حد تک ہم پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں, یہ ساری باتیں جو ہیں وہ دوسری کانفرنس میں اس پر غور و فکر کیا گیا, اس پر بحث کی گئی. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں خاص اہم بات یہ تھی کہ ابھی تک گرودیو ٹیگور, اس دوسری کانفرنس میں گرودیو ٹیگور کا پیغام پہنچا.
کیا
تو اب گرودیو ٹیگور کی تو بات, یہ ایک بڑا, بہت بڑی شخصیت تھی, تو رابندرناتھ ٹیگور کا جب پیغام پہنچا تو اس نے ترقی پسند مصنفین کی اس انجمن میں ایک نئی روح بھر دی کہ ایک اتنا بڑا آدمی ہمارے ساتھ ہو گیا, اور واقعتاً ایک نیا بوسٹ مل گیا ان کو, ایک نئی طاقت توانائی مل گئی. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ, ٹیگور نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھی ادب, سماج اور ادیب, اس دوسری کانفرنس کی اہم بات یہ تھی
کہ ادب سماج اور ادیب,
ادب سماج اور ادیب یہ ایک مثلث بنتا ہے, ایک طرف ادیب کھڑا ہے, ایک طرف ادب رکھا ہوا ہے, یہ ایک خط بن گیا, اور ایک تیسری چیز جو زاویہ تیسرا آ رہا ہے وہ ہے سماج. جب اگر آپ نے اس میں سے ایک کو بھی ہٹا دیا تو وہ مثلث کسی کام کا نہیں رہ جائے گا. تو اس لیے گرودیو ٹیگور نے کہا کہ دیکھیے اس کو آپ ایک مثلث بنا کر چلیے اور تینوں ایک دوسرے سے جڑے رہیں, تین لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر
برابر
کھڑے رہیں اور ایک دوسرے سے ہر ایک جڑا رہے. یہ نہیں کہ آپ بالکل ادب سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں, ادیب کو, ادیب جو ہے اپنی شہرت کے لیے ادب تخلیق کر رہا ہے, یہ نہ ہو. ادب تخلیق ہو رہا ہے تو سماج سے اس کا سروکار رہے, یہ نہ ہو کہ سماج کا اور ادب کا اور ادیب کا دونوں تینوں کوئی تال میل نہیں ہے, ادیب صرف لکھ رہا ہے کہہ رہا ہے, وہ اس کو سمجھ کوئی نہیں رہا, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ گرودیو ٹیگور نے کہا. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاشرے میں جو نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو ادب نے قبول کرنا چاہیے.
صحیح بات ہے,
ایک چیز, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ادب نے یہ کام بھی کرنا چاہیے کہ ان تبدیلیوں کے لیے کیسے ماحول تیار کیا جائے.
صحیح بات ہے, یہ بہت بڑا کام ہے,
یہ کام بڑا تھا. تو ٹیگور نے جب یہ کہا تو واقعی وہی کام ترقی پسند تحریک نے, انجمن ترقی پسند مصنفین نے یہ کام کیا. ہم دیکھتے ہیں ان کی تاریخ اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو ہم کو یہی ملتا ہے کہ انہوں نے شروع سے یہی کام انجام دیا کہ ماحول تیار کیا, لوگوں کے ذہن بنائے, नजरियात अपने उन तक पहुंचाए और अपने नजरियात की ऐसे तबलीग की कि कई नस्लें उससे मुतासिर हुई, कई नस्लें मुतासिर हुई। आज भी हम देखते हैं कि तरक्की पसंद के हम ये सुनते नहीं है ज्यादा, हम सिर्फ अब वो तारीख का हिस्सा बन गई है, लेकिन जो लोग हैं वो लिख रहे हैं आज भी,
लिख रहे हैं आज भी। सही बात है।
तो कुछ ने थोड़ा सा उसका कहीं ना कहीं गलत फायदा उठाया, ये कि जिनसियात को मौजू बना लिया, कहा कि ये तरक्की पसंदी है, तो वो एक उसका तरक्की पसंदी में ये भी देखा जाना चाहिए था, मेरी जाती राय कि ये भी देखा जाना चाहिए था कि रूसी समाज में जब तरक्की पसंद तहरीक चली, टॉल्स्टॉय की अगर हम बात करते हैं या मार्क्स की बात करते हैं, तो वो एक अलग बात है, वो उस समाज में जो कदरें थी वहां के वहां उस उन, उन उस लिहाज से, उस माशरे के लिहाज से वो बातें इतनी मायूब नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान में जिनसियात एक टैबू जिसे कहते हैं हम, शजरे ममनुआ कि इसको हाथ नहीं, ये चीज को नहीं, वो हमारे तहजीब का हिस्सा ही नहीं था, हमारी सकाफत का हिस्सा ही नहीं था, वो उनकी तहजीब का हिस्सा था,
सही बात,
तो उन्होंने उसको कबूल कर लिया, हमारी तहजीब का हिस्सा नहीं था, तो जिनसियात जो है वो हमारे समाज ने माशरे ने उसको कबूल ही नहीं किया, वो फहाशी की जद में आ गया, ऑब्सिनिटी उसकी जद में आ गया।
सर जैसे कि आपने कहा, टैगोर जी ने कहा था कि माहौल पैदा करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये माहौल जो पैदा करने वाला है वो जरूरी नहीं कि किसी यानी वो लेखक ही हो या किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखता हो, लेकिन जो कॉमन मैन है वो भी ये माहौल पैदा कर सकता है। जैसे शिक्षा का एक उसके अंदर उदाहरण है कि अगर एक ने शिक्षा ली तो वह औरों को प्रेरित कर सकता है, उनको मोटिवेट कर सकता है, तो ऐसे माहौल पैदा करने वाले कौन कौन लोग होते हैं आपके नज़र से?
देखिए, अदीबों के अलावा किसी तहरीक के लिए काम करने वाले तो जितने भी उसके मानने वाले होते हैं, फॉलोअर्स, ये वो काम करते हैं, क्योंकि अदीब का काम तो तख्लीक, अदब की तख्लीक करना है, लेकिन जो लोग उसको मानते हैं, जो उससे इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ इसने सही कहा, तो फिर ये होता है कि वो चार लोगों में उठते बैठते हैं, फिर वो चार लोगों में वो बात रखते हैं, फिर वो चार लोग 40 लोगों को बताते हैं, ऐसे हर एक जो है वो एक, कम से कम एक के हिस्से पे 10 लोग सुनने वाले आते हैं, तो एक की बात 10 तक पहुंचती, फिर 10 की बात 100 तक, आप उसको जरब देते जाइए, मल्टीप्लाई करते चलिए, तो उतने लोगों तक वो बात पहुंचती चलती है। तो बात पहुंचने का मतलब ये होता है कि जो लोग उस बात से इत्तेफाक रखते हो वो माहौल तैयार करते हैं। आज हमारे यहां जो हिंदुस्तान में जिस तरह का माहौल तैयार हुआ है, तो ऐसे लोगों ने उसको माहौल तैयार किया है कि उसमें, देखिए अहम चीज यह है कि माहौल तैयार करने में, आज जो उसने माहौल तैयार करने का जो रूप आ गया है, इसमें तहकीक की किसी को जरूरत महसूस नहीं हो रही है कि जो बात की गई है वो उसकी तहकीक की जाए, पता लगाया जाए कि वो सच है या नहीं,
है या नहीं।
आज तो अफवाहों पे सब चल रहा है। इसको हम पहले एक जर्मन, मतलब आप जानते हैं कि दूसरी जंग अजीम में ये अफवाहें जो थी, ये जर्मनी का सबसे बड़ा हथियार था, प्रोपेगेंडा, ये आज यही चल रहा है, हकीकत कुछ नहीं है लेकिन बस प्रोपेगेंडा हो रहा है कि ऐसा हो गया और उस पर सारा समाज जो है वो बढ़ गया।
सही बात है।
तो ये
सर अभी ये जो और जो कॉन्फ्रेंस हुई, जैसे कि भीमली में हुई, हैदराबाद में हुई, इसमें क्या क्या रूप मिला इस मूवमेंट को, और कुछ बदलाव आया क्या उसके अंदर और कुछ?
देखिए ये तो उसके मुख्तलिफ मराहिल थे जब तरक्की पसंद तहरीक अपना सफर तय कर रही थी, तो बीच में हम बस से सफर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि बीच में कई मकाम आते हैं, मंजिलें नहीं आती,
मकाम आते हैं मंजिलें नहीं आती, सही
मंजिल तो उसको कहते हैं जहां हमको रुकना होता है,
रुकना होता है, सही बात है।
तो ऐसे कई मकाम आए, उनकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई यहां से उनकी इब्तदा थी, यानी गाड़ी में बैठे थे
बस, सही बात, शुरुआत।
उसके बाद दूसरी कॉन्फ्रेंस जो है वो मकाम था बीच में, उसके बाद तीसरी कॉन्फ्रेंस, तो इसमें ये सब मकामात रहते चले गए, यहां तक कि आजादी आन पहुंची। 1936 से 1947 का जमाना 11 साल पर मोहित था, तो पहली कॉन्फ्रेंस 1936 में हुई और 1947 में आजादी मिली, तो ये 11 साल का जो अरसा था, ये अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन ने अपनी कोशिशें करते हुए गुजारा, और पूरी उनकी उसमें दूसरी कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें तीसरी कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें चौथी कॉन्फ्रेंस भी हुई, ये सब होता रहा, लेकिन इसके साथ साथ उनको ज्यादा मौका इसलिए नहीं मिल सका, काम तो वो करते रहे, तरक्की पसंद मुसन्निफिन अपना सज्जाद ज़हीर, महमूद ज़फ़र, रशीद जहां, आपके डॉक्टर अशरफ, उसके साथ और दीगर उर्दू इन हिंदी सब मिलकर अदीब लोग काम करते रहे। 1947 तक यही होता रहा कि वो तरक्की पसंद मुसन्निफिन की अंजुमन थी, ना हिंदू की थी ना मुसलमान की थी, सब एक साथ थे उसमें। मुंशी प्रेमचंद की सदारत में अगर कॉन्फ्रेंस हो रही है वो भी पहली, तो आप इस पर से अहमद का अंदाजा लगा दीजिए आप कि कैसा। और उसकी मुंशी प्रेमचंद का एक मुझे बात याद आ रही है कि मुंशी प्रेमचंद ने इब्तिदा में जब मसाइल बदले, इंसान का नजरिया बदलता है समाज में, जैसे समाज में तब्दीलियां आती हैं, माशरे में तब्दीलियां आती हैं। पहले एक अफसाना का मिसाल देता हूं मैं कि एक अफसाना लिखा है दोस्ती, उसमें सलीम और रमाकांत ये दो किरदार हैं। उसमें ये किरदार के सलीम और रमाकांत दोनों दो अलग अलग समाजों से, दो अलग अलग मजाहिब के, एक ही समाज के दो अलग अलग मजहब को मानने वाले कैरेक्टर किरदार थे, एक गरीब और एक अमीर, अमीर यानी ठीक ठाक। उन्होंने इस बात पे कि सलीम जो है वो रमाकांत दोनों साथ में पढ़ते हैं, और एक दिन रमाकांत आता नहीं है तो वो सलीम उसको परेशान हो जाता है कि रमाकांत क्यों नहीं आया। तो पता चला जब वो बाहर जाकर देखता है तो स्कूल से के बाहर कंपाउंड की दीवार से लगकर रो रहा है। तो उसको पूछता है कि क्या हुआ, उसने कहा कि कुछ नहीं, वो बताता है कि मेरे पास पैसे नहीं है फीस भरने के लिए। तो सलीम कहता है कि आइंदा तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा, खबरदार जो आइंदा अगर कोई बात छुपाई, चलो फीस में भरता हूं और आइंदा कभी स्कूल को डॉज नहीं देना। तो ये इसके जरिए कई बातें, उस वक्त वो मसाला था, लेकिन वहां से हटकर फौरन जमाना बदल गया, माशरे में तब्दीलियां आ गई। तो फिर कफन जैसा नॉवेल, कफन जैसा अफसाना लिखा मुंशी प्रेमचंद ने, कि जिसमें बहुत कम किरदार हैं लेकिन जो उसमें सानिया है कि उनकी बीवी मर जाती है, वो उसका कफन का पैसा बेचकर शराब पीते हैं। माशरती मसाइल की अक्कासी है, तो माशरे में तब्दीलियां आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब अदीब अपना काम कर रहा है तो उसके रुझानात में भी तब्दीलियां आती हैं, उसका जो फोर्स फोकस है वो भी बदलता है,
वो भी बदलता है। सर ये जो मुसन्निफिन तहरीक के बारे में आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, तो मेरा ऐसा एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि ये मुसन्निफिन तहरीक जो है
जी,
उसकी जरूरत क्या जब हम स्वतंत्र नहीं होते तभी होती है, या कुछ डेवलपमेंट होने के बाद होती है, या क्या ऐसा कुछ समय काल सीमा है कि अब आपको मुसन्निफिन तहरीक की जरूरत नहीं, अब आप अपने आप जैसे गाड़ी अपने आप चलती है
जी,
वैसे आपकी डेवलपमेंट हो जाएगी या जो कुछ तरक्की है वो हो जाएगी, तो मुसन्निफिन तहरीक का कुछ ऐसा एक्सपायरी होता है क्या, या वो चलती रहती है सामाजिक जीवन में?
देखिए ये आपने सवाल बहुत ही बहुत बड़ा सवाल किया आपने, और उतना ही अहम सवाल है कि तरक्की पसंद तहरीक जो है वो उसका वक्त खत्म हो गया, उसका अरसा खत्म हो गया, अब उसकी जरूरत बाकी नहीं रही, ऐसा है क्या? आपने ये जो बात कही है, असल में मेरी जाती राय ये है कि तरक्की पसंद तहरीक की जरूरत खत्म नहीं हुई है।
नहीं होती, सही बात है,
क्योंकि जब आपने एक लफ्ज उसमें लगा दिया तरक्की प्रोग्रेस, तो प्रोग्रेस जो है वो एक एक वक्त में चलकर खत्म हो जाने वाला अमल नहीं है। प्रोग्रेस का मतलब ही यह है कि चलते चलिए चलते चलिए चलते चलिए, उसका कोई जब तक दुनिया खत्म ना हो जाए वो चलता रहता है। जैसे इंसान की तरक्की का अमल देखते हैं हम कि बच्चा पैदा होता है तो हम उसको बांध नहीं देते कि जब वो जवान हो गया तो तरक्की खत्म हो गई, नहीं, वो तो मरते दम तक उसकी तरक्की चलती रहेगी। तो तरक्की पसंद तहरीक की जरूरत समाज में माशरे में आज भी है, लेकिन हुआ ये कि तरक्की पसंद तहरीक की उसके नजरियात की अपनी एक महदूदियत थी। एक चीज ये भी थी कि जब हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तो तरक्की पसंद तहरीक और तरक्की पसंद मुसन्निफीन के जहन में एक ये बात भी थी कि अगर हिंदुस्तान आजाद हो जाता है तो क्या ये जिस नजरिए को ये संभाले हुए थे इश्तराकियत के यानी कम्युनिज्म के, तो एक उम्मीद थी कि हिंदुस्तान आजाद होगा तो फिर शायद हो सकता है कि रूस के जेरे असर आकर कम्युनिस्ट मुल्क बन जाए, तो फिर तो अपनी चांदी ही चांदी है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यहां पर जमहूरियत आ गई। जमहूरियत आ गई तो फिर जाहिर सी बात है कि जो ख्यालात कम्युनिज्म के यानी इश्तराकियत के जो नजरियात तरक्की पसंदों के थे उसको बहुत ज्यादा फलने फूलने का मौका नहीं मिला, और हुकूमत ही नहीं है जब, तो सपोर्ट कौन हिमायत करेगा उनकी। तो इसलिए धीरे धीरे फिर वो लोग भी जाते रहे। सज्जाद ज़हीर का इंतकाल हो गया, रशीद जहां चली गई, उसके बाद और दीगर लोग जो उसके बुनियाद, प्रेमचंद चले गए, टैगोर नहीं रहे, नेहरू चले गए यश आजादी के बाद, तो फिर एक बड़ा जो तबका था हसरत मोहानी चले गए। तो ये बड़ा तबका था जो बहुत ही ताकत के साथ तरक्की पसंद तहरीक के बुनियाद गुजारों में शामिल था, तो इनके ना रहने से नई नस्ल जो आई तो वो एक नए माहौल की नई जरूरतों के वहां मंजरनामे से निकलकर आई थी। तो इसलिए फिर वो उसको हटाकर एक नया नजरिया आ गया, और जिसको कहा गया कि भी जदीदियत, उसको कहा गया जदीदियत। फिर वो जदीदियत ने ले ली उसकी, क्या कहा नहीं, उन्होंने उनका उनकी तरक्की पसंदों की बहुत सारी बातों का इनकार किया और जदीदियत की राहें हमवार होनी शुरू हो गई। ये एक अलग बात है कि जदीदियत भी बाद में खत्म हो गई और फिर मां बाद है जदीदियत, जदीदियत यानी मॉडर्निज्म, फिर पोस्ट मॉडर्निज्म आ गया, फिर अब वो भी चला गया।
सर जैसे कि आपने बहुत अच्छा ये कहा कि ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है तरक्की पसंद मुसन्निफीन, उसका नेचर भले बदल जाता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे ले ले कि गांधी जी का स्वदेशी का जो प्रिंसिपल था
जी,
वो उस वक्त बहुत जरूरी था, उसकी जरूरत आज भी है ग्लोबलाइजेशन के दौर में। आज भी हम कहते हैं कि इंपोर्टेड चीजें अगर हम खरीदें तो पैसा सब बाहर चला जाता है,
बहुत अच्छा,
और अपने जो इंडस्ट्रीज है उनको तरक्की नहीं होगी। तो तरक्की पसंद मुसन्निफीन की जरूरत हर साल में है, हर दौर में है, खाली उसका जो नेचर बदलता जाता है, वो नेचर जो बदलता है उसको जान लेना, उसको समझ लेना और तरक्की की तरह हरदम चलते रहना
जी।
ये कहा आपने, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। सर आज आपने हमको ये जो जानकारी दी तरक्की पसंद तहरीक के बारे में, तो ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, और मैं तो चाहूँगा कि ये तरक्की पसंद मुसन्निफीन जो है वो अगर आप अपने मन में भी डाल ले, तो जैसे कि हम अभी बीए उर्दू कर रहे हैं
जी,
तो ये प्रोग्रेसिव पाथ है हमारा,
बिल्कुल,
तो ये प्रोग्रेसिव डिसीजन है कि अपने जो मुसलमान भाई बहन है उनको शिक्षा की ओर लेके आने का ये तरीका ही है, तरक्की पसंद ही अप्रोच है ये हमारा,
बिल्कुल।
तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे बच्चे भी उसको पूरी तरह से जान ले और उसको पूरी तरह से सपोर्ट करे, ताकि ये जो हमारा प्रोग्राम है कि ग्रेजुएशन दिलाना अपने बच्चों को ये बहुत आसान हो जाएगा, उनकी तरक्की होगी। और मैं फिर एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतनी बड़ी जानकारी, इतनी अच्छी जानकारी हमको दी, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे स्टूडेंट्स को ये लेक्चर जो है सर का, ये जो हमने इंटरव्यू लिया है उससे बहुत फायदा होगा। धन्यवाद।